जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ।
ओम शांति। तो हमने कल सुना था रूहानी सफ़र की पहली कड़ी, जीतू भाई ने हम सबको उससे अवगत कराया था। बचपन से ही जीतू भाई ज्ञान में, आज कुछ नए चेहरे भी हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, तो थोड़ा फिर से प्रकाश डाल देते हैं। जीतू भाई मधुबन के होली हंस होली स्टार हैं, जो टोली किचन डिपार्टमेंट में विशेष रूप से सेवा देते हैं और यूथ विंग के एग्जीक्यूटिव मेम्बर भी हैं, जो समय पर बहुत सारे यूथ के लिए अनेक प्रेरणास्पद कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं जगह जगह ऑल ओवर इंडिया में। ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं, लॉकडाउन में भी काफ़ी बिजी रहे। तो कल उन्होंने अपने जीवन का जो रूहानी सफ़र की पहली कड़ी बताई थी, कैसे वो बचपन से ज्ञान में चले, कॉलेज लाइफ में कैसे कैसे ऑब्स्टेकल आए, उनके सामने विघ्न आए, कैसे उनको पार किया, उनके माता पिता का उनके जीवन में क्या अहम रोल रहा, वो सब चीज़ों से हमको अवगत कराया। आज दूसरी कड़ी में हम पुरुषार्थ के बारे में विशेष फोकस रहेगा। जो भी हमारे किसी के प्रश्न उत्तर और भी हो सकते हैं, प्रश्न बीच में तो पूछ सकते हैं, उत्तर तो जीतू भाई दे ही देंगे। तो अभी उसी कड़ी में हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आप करीब 30 वर्षों से मधुबन में रह रहे हैं, कौन सा एक ऐसा पुरुषार्थ है जो आपका कभी मिस नहीं हुआ है। बाबा कहते हैं एक भी अगर गुण पकड़ो तो सारे गुण पीछे आ जाएंगे। अगर ज़िंदगी में हमारा एक भी पुरुषार्थ एक्यूरेट चल रहा है तो सारे पुरुषार्थ अपने आप ही हो जाएंगे। तो जीतू भाई हमको बताएंगे कौन सा ऐसा पुरुषार्थ रहा जो कभी मिस नहीं हुआ। जीतू भाई जी।
ओम शांति। देखिए जिंदगी ऐसा परे सुहाना गीत बजा, तो मुझे एक विचार आया, उसमें नेक्स्ट लाइन है, कल क्या हो किसको पता है ना। जिंदगी सफर इसीलिए सुहाना है क्योंकि हमको पता नहीं कल क्या होगा। जो कुछ होगा अच्छा होगा और उसका बेस होगा हमारा अभी का पुरुषार्थ, हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो जैसे कहा कि मधुबन में इतने समय से है, तो मधुबन ऐसी भूमि है कि हर कोई अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपनी स्थिति के दम पर यहाँ रहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा इस भूमि पर ऐसा नहीं है जो किसी दूसरों के सपोर्ट से या दूसरों के पुशअप से रह पाए। ठीक है, थोड़े समय के लिए तो रह भी जाए। और जो हमारे मुख्य जो धारणाएं है, मुख्य जो दिनचर्या है, वो तो है ही मधुबन की, उसको तो फॉलो करना ही है, करते ही है। लेकिन मैं अपने लिए अगर कहूँ कि पुरुषार्थ मतलब एक चीज़ ऐसी जो मैं पहले दिन से उस पर कायम हूँ, थोड़ा सा हार्श लगेगा लेकिन मैंने अपने जीवन में फॉलो किया है कि आज लगभग मुझे 28-29 साल हो गए, 30 साल होने पे आए, लेकिन आज तक मैंने कभी भी किसी भी आत्मा की कोई शिकायत नहीं की गई। और ख़ास करके उसके पीछे एक चीज़ ये है कि मैं खुद मानता हूँ कि अगर हम शिकायतें करने लगे तो हर किसी से, हर व्यक्ति से, खुद से भी बहुत सारी शिकायतें होने लगती है। और उसका असर खुद पर ही रहता है, खुद के पुरुषार्थ पे आता है और हम ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। और यहाँ इस भूमि पर जो भी व्यक्ति आया है या आएगा, उसमें ऐसी एक विशेषता होगी जो दुनिया में किसी भी आत्मा में नहीं है, इसीलिए भगवान ने उसको यहाँ रखा है। तो एक चीज में मैं थोड़ा सा ये रहा। दूसरा जो कहते हैं कि अपना बेस जो है बाबा की मुरली, तो जब शुरू शुरू में मधुबन में आया था तो मैं सोचता था कि कैसे अभ्यास करे, इतनी सारी मुरलियाँ होती, इतना सारा था ज्ञान है। अभी तो आप लोग रोज सुनते ही है सचिन भाई का इतना अच्छा मंथन होता है जो सबको एक कम मक्खन मिलता है। तो उस समय भी हम सोचते थे कि कैसे इसको हम अपने बुद्धि में भरे, क्योंकि केवल पठन करने से या केवल दो बार चार बार पढ़ने से बुद्धि में नहीं फिक्स हो पाता है। तो मैंने शुरुआत में एक अभ्यास किया कि जितने भी मेरे क्वेश्चंस क्रिएट होंगे बुद्धि में, उसी समय उसको डायरी में नोट करता था और कोशिश करता था कि मुरलियों से किताबों से उसका आंसर मिले। और जहाँ आंसर नहीं मिलेगा तो वहाँ फिर जो महारथी थे, सूरज भाई जी थे, शिलू बहन जी थे और भी दादिया भी थे, मातम प्रकाश भाई जी थे, तो उनसे फिर पूछते थे। कई बार तो उनसे थोड़ा बहस भी करते थे जब तक आंसर नहीं मिलेगा, और जो आंसर मिलेगा तो उसको वापस डायरी में नोट करके रखते। तो अभी मेरे पास लगभग 5000 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस है जिनका उस समय से नोट करके रखा है। तो अभी भी कभी भी कुछ ऐसे लगता है तो डायरी खोल देते हैं तो उसमें बाबा का आंसर एकदम इजीली मिल जाता
है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, किसी से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं है। तो हमारे से भी कोई शिकायत नहीं,
नहीं
है?
नहीं, किसी से नहीं किसी से अच्छा। नहीं,
बड़ी अच्छी बात है।
तो भगवान से भी नहीं, किसी से भी नहीं।
चलो अच्छी बात है जी। प्रश्न दूसरा है, आप मुरली के महावाक्यों को किस विधि से अर्जित करते हैं?
जैसे कहा कि मैं खुद ही बुद्धि में क्वेश्चन क्रिएट कर लेता हूँ, वही सबसे अच्छा तरीका है महावाक्यों को अर्जित करने का। क्योंकि देखो, हम इतने भाग्यवान हैं कि शायद स्वर्ग में भी वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। स्वर्ग में कोई एक गुरु होंगे, राजगुरु होंगे, वो हमें पढ़ाएंगे, तो वो जो पढ़ाएंगे हम उसको सुन लेंगे या उसके आधार से चलेंगे। लेकिन अभी केवल संगम युग में ही ये चीज़ है कि एक तो स्वयं भगवान हमको रोज पढ़ाते हैं और दूसरा भगवान ने हमें ऑप्शन दिया है कि आपको जो पढ़ाते हैं आप भगवान से वेरीफाई करा सकते हैं और किसी से वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं है। तो जब कोई चीज़ मुरली की, खास करके पूरे मुरली में एक दो पॉइंट ही होती है जो बुद्धि में अच्छी तरह से क्लिक हो जाती है, तो उस समय उस पॉइंट को फिक्स तो कर लेते बुद्धि में, लेकिन मैं विजुलाइज करता हूँ जब भी बाबा से याद करते हैं, बाबा से बातें करते हैं, तो एक विजुलाइज करता हूँ कि भगवान ने ये चीज़ कही है। जैसे भगवान ने कहा कि मीठा बोलना है, सिंपल बात है, मीठा बोलना है। तो वो चीज़ जो भगवान ने कही है मतलब मैं कर सकता हूँ इसलिए भगवान ने कही है। तो फिर विजुलाइज करते हैं कि मैं भगवान का बच्चा सबसे मीठी बात कर रहा हूँ, तो उस समय मेरे बोल कैसे हो रहे हैं, मेरे कर्म कैसे हो रहे हैं। दूसरा, जो सामने वाला व्यक्ति है तो मेरे कर्मों के कारण, मेरे बोल के कारण उसकी रिएक्शन कितनी रिस्पेक्टफुली मेरे से हो रही है, तो विजुलाइज करने के कारण वो चीज़ एकदम फिट हो जाती है। और कोशिश करते हैं, बाकी सब तो पुरुषार्थी है, बहुत बार ऐसे मिस भी हो जाता है, बहुत बार दूसरी चीज़ें भी हावी हो जाती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को दिन में दो बार, तीन बार, चार बार रिपीट करें, ताकि वो चीज़ केवल ज्ञान के आधार से बुद्धि में ना रहे लेकिन मेरे कर्मों में आए, मेरी धारणा बन जाए। तो कोशिश यही करते हैं और वही आधार है शायद मधुबन में सबका ही, सभी करते ही है, तो युक्तियाँ अलग अलग होती है लेकिन वही आधार है मधुबन में अपनी स्थिति बना के रखने का।
तो मुरली को अर्जित करने का तरीका हमने सीखा, बार बार रिकॉल करना, ना केवल वो हमारा सुनने तक सीमित रहे बल्कि सारे दिन में कोई एक दो पॉइंट लेकर उनको बार बार रिकॉल करें, चिंतन करें, मंथन करें, उनको अभ्यास में लाने का हम मेहनत करें। तो एक बात उन्होंने बताई कि मैं मीठा बोलने की हमेशा कोशिश करता हूँ, तो ये तो हमने भी देखा, जब से हम यहाँ आए हैं तो तब से मीठा बोलते रहते हैं तो कभी भी हमने इनको देखा नहीं, अग्रेसिव मोड पर नहीं देखा है, मीठा बनाते भी हैं हमेशा, हमने इनको हाँ जी, खिलाते भी है, स्पिरिचुअली एनर्जेटिक मोड में देखा हमेशा इनको हमने, तो मीठा खिलाते भी। आज विशेष रूप से टोली लाए हैं और बहुत ताकतवर है वो भी, हमने कल देखा था किस लिए बन रही है, तो वो भी पता चला है किस लिए बन रही है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, आप अमृत वेले या नुमा शाम या दिन में कभी भी बाबा से कैसे कनेक्शन जोड़ते हैं और क्या बातचीत करते रहते हैं, कोई अंदर की बात एक विशेष रूप से बताइए।
देखो, मैं जैसे कहा कि ये बहुत हम सभी भाग्यवान हैं, और उसमें भी एक प्लस पॉइंट हमारे लिए ये है कि हम जिस संबंध से चाहे उस संबंध से भगवान के साथ बात कर सकते, संबंध बना सकते। तो मैं अपने जीवन में बाबा को सबसे ज़्यादा, वैसे तो हर संबंध से कभी न कभी याद करते ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्त के रूप में याद रखता हूँ। और अमृत वेला हो, चाहे नुमा शाम हो, चाहे कहीं भी कभी भी, तो एक भगवान को दोस्त के रूप में सदा साथ में रखता हूँ। और एक मतलब मेरी अपनी सोच है कि उस खुदा को दोस्त बना लिया, इसलिए सारी दुनिया दोस्त बन सकती है। जब भी कुछ इसे बात होती है तो दोस्त के रूप में भगवान के पास चले जाओ, पूरा दिल खाली कर लो। और खास करके अमृत वेला और नुमा शाम के लिए मैंने अपना एक ये बनाया है कि अमृत वेला है मेरे खुद के लिए, कि खुद भगवान से अनुभूति कराए और खुद एम्पावर बने, और शाम का समय दूसरों के लिए, जो मैंने उनसे पाया है वो दूसरों को स्प्रेड करने का कोशिश करें। कभी कभी होता है सरकमटांस अनुसार कभी कुछ होता है तो संगठन में बैठे आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे जो आत्म प्रकाश भाई है, तो मेरा एक भाग्य भी ये है कि उनके साथ रूम शेयर करने का भी अवसर मिला। तो आत्म प्रकाश भाई का एक विधि देखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी लेट हो जाए, कहीं से भी आए, लेकिन सवेरे 2:45 भाई साहब उठ जाएंगे और वहाँ कमरे में सोफे में बैठ जाएंगे। तो उस कारण एक आदत बन गई कि नहीं, क्या कुछ भी हो जाए, ये हमारे जीवन का बेस है। और इसलिए वो चीज़ कोशिश करते हैं कि कभी मिस ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है, कभी सेवा है, कभी कुछ है, तो थोड़ा चलते फिरते भी होते, लेकिन उस समय बाबा से वही संबंध से कोशिश करते हैं।
बाबा से क्या बोलते हो आप?
बाबा जो दोस्त होता है ना, दोस्त के साथ तो हर चीज़ शेयर कर सकते हैं ना, तो हर चीज, जो चीज हम खुद से भी नहीं बोल सकते वो भी बाबा से बोलते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि हम जो लाइफ जी रहे, जैसे सुशील भाई ने बताया कि मधुबन में वैरायटी डिपार्टमेंट्स संभाल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जैसे सेवादारी वगैरह आते हैं या दूसरी चीज़ें भी होती है, तो एडमिन करना होता है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी चीज़ है कि उसमें सब प्रकार के डिसीजंस होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि किसी को भी हार्श ना बोले या किसी से भी कुछ ऐसे नहीं रहे, लेकिन होता है कभी किसी ने कुछ कुछ चीज़ देख लिया तो थोड़ा संकल्प चलने लग जाते हैं बुद्धि में, वो आत्मा सामने आती है तो थोड़ा संकल्प चलता है कि अरे इसने ये किया था। लेकिन हम अगर बाबा को उस समय कह देते हैं, खास करके अमृत वेले, कि अभी नया दिन है, जैसे आज सचिन भाई ने कहा ना कि लव जो होता है या पास्ट कोई होता ही नहीं, तो आज नया दिन है, नया दिन में ये सब कुछ फिनिश करके मुझे नए सिरे से चलना है। तो जो चीज़ हो गई वो रात को गुड नाइट के समय तो हमने बाबा को समर्पित कर दी, उस आत्मा को इमर्स करके समर्पित भी कर दी कि अभी फिनिश, फुल स्टॉप। इसके लिए एक छोटा पुरुषार्थ दादी गुलजार जी ने हमको बताया था बहुत शुरुआत में, मैं कई जगह शेयर भी किया वो चीज़, कि हमने दादी जी से पूछा था कि दादी जी आपका माइंड इतना स्टेबल कैसे रहता है और आप कैसे भूल जाते हो कोई भी चीज़ को जल्दी से। तो दादी ने तीन युक्तियाँ बताई थी, क्लीन, क्लियर और केयर, कि आपका जो कुछ भी दिन में होता है, जिससे भी, चाहे किसी ने बहुत आपको हेल्प कर लिया हो, माना किसी का उपकार आपके ऊपर हो गया हो, उसके अच्छाई से आप प्रभावित हो गए हो, या कुछ बुरा भी चीज़ हो गई हो, तो भी हमारी बुद्धि क्लीन हो जानी चाहिए रात को। दूसरा, क्लियर कनेक्शन, भगवान के साथ हमारा क्लियर कनेक्शन है, वैसे ही हर एक आत्मा के प्रति, कि वो आत्मा भी उस रोल से आपके साथ बात कर रहे और हमारा भी उससे केवल इसीलिए कनेक्शन है क्योंकि वो भी भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं। जब इस तरह से अगर क्लियर हमारे बुद्धि में होगा तो वो चीज हमारे बुद्धि पर कभी हावी नहीं हो पाएगी। जैसे कहा ना कि भगवान को दोस्त के रूप में मानता हूं और उसके कारण सारे दोस्त बनते हैं, लेकिन अगर मैं जो चीज उस दोस्त के साथ शेयर करता हूं वो चीज किसी और स्थूल दोस्तों के साथ शेयर करने लग जाऊं तो वो दूर हो जाएगा जिसके कारण हम आपस में मिले हैं। तो ये क्लैरिटी बुद्धि में अगर रहेगी तो हमारा जो है ना हमेशा चीयरफुल रहेगा, खुशी बनी रहेगी, हम खुशी बांटते भी रहेंगे। और तीसरा केयर करना, कि हमारे रिलेशन को केयर करना केवल और केवल हमारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। अगर बाय चांस कभी कुछ हो भी जाता है तो एक तो दिल से तो उसको माफ किया, लेकिन कोशिश करके कम से कम एक बार उसके साथ बात करके उसको सॉरी कह के वो बात खत्म करनी चाहिए। उसके कारण बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जो हम लोग सोचते हैं, कई बार आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, बहुत छोटी सी चीज होती है लेकिन आपस में थोड़ी सी दूरी बन जाती है तो वो चीज बहुत हावी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। हम कोशिश करते हैं कि ये सॉल्व होना चाहिए लेकिन पहल कौन करे, इसके लिए रुक जाते। तो इसलिए एक अपने दिल से उसको सॉरी भी करना, माफ भी कर देना। मैं खुद एक अभी फिलहाल ऐसे पुरुषार्थ करता हूँ कि जो मेरे छोटे होते हैं, हमारा जिन्स जो हमारे पालना के अंदर चल रहे हैं, उनको भी गाइड करना है लेकिन उनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ करते हुए आगे बढ़ना है। और मैंने देखा है ये चीज़ कि अगर हम कोई अगर छोटी सी मिस्टेक कर लेता है और उसको अगर थोड़ा सा जोर से बोल लेते हैं तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना करे, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना हम जितना बोलेंगे उतना ज्यादा मिस्टेक करता रहते हैं। लेकिन अगर हम दिल से उसको माफ भी करेंगे लेकिन सावधानी जरूर देंगे एकदम खुले दिल से कि भाई इस बार ऐसे हुआ है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ध्यान रखो, तो हम जितना कम बोलेंगे उतना उसके दिल में ज्यादा फील होगा और नेक्स्ट टाइम के लिए वो अपने आप ही थोड़ा सा संभाल रखेगा। और जो हम जींस होते हैं या जो कोई ऐसे कारोबार में आने के बाद कुछ छोटे मोटे टकराव होते या कुछ ऐसे भी आत्माएं होती है जो हम चलते हैं लेकिन बिना वजह भी कोई बीच में ऑब्स्टेकल्स भी क्रिएट हो जाते हैं परिस्थिति वश संस्कार वश, लेकिन उनको भी दिल से माफ कर देते। दिल से माफ कर देंगे तो हमारा पुरुषार्थ उसका जो होना हो जाए लेकिन हमारा पुरुषार्थ स्मूथ चलता रहता है।
तो इसमें हमने तीन बातें सीखी, कौन कौन सी? क्लीन, क्लियर और
केयर।
केयर किसकी? अपनी, दूसरों की? सबसे पहले अपनी। तो खुदा दोस्त के साथ ये तीन चीजें करेंगे तो हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय आपका कौन सा विशेष पुरुषार्थ चल रहा है?
अभी तो फिलहाल यही पुरुषार्थ चल रहा है जो आपको शेयर किया।
अच्छा अच्छा, इस अभी नेक्स्ट प्रश्न है, आप अपनी कोई 10 विशेषताएं बताइए।
अभी मेरी विशेषता है तो दूसरे बताएंगे।
दूसरे तो बता देंगे लेकिन खुद बता देंगे, बहुत बड़ी विशेषता है, साक्षी होगी।
विशेषता है या नहीं वो पता नहीं, लेकिन मैं जिन चीजों पर ज्यादा फोकस करता हूँ वो चीजें शेयर कर सकता हूँ कि, और आप सर्टिफिकेट दे सकते या ब्राह्मण परिवार सर्टिफिकेट दे सकता है, बाबा सर्टिफिकेट दे सकता है कि विशेषता है या नहीं है। सबसे पहली चीज तो मैं कोशिश करता हूं कि सरल बनना, सरलता का गुण धारण करना। कोशिश करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सरल बन के रहे। क्योंकि कई बार हम देखा है जो मुरली में भी अभी बाबा ने कहा ना कि व्यर्थ में उलझ जाते हैं, व्यर्थ से मुक्त होना है। तो कई बार देखते हैं कि हम बिना वजह, हमारा कोई कनेक्शन भी नहीं होता है लेकिन ऐसी चीजों के कारण हम आपस में चर्चा करने लग जाते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं, और व्यर्थ में गए मतलब वो व्यक्ति सरल नहीं हो सकता। तो सबसे पहला प्रयास तो ये करता हूँ कि सरल बने। वो कहते हैं ना कि सब कुछ मीठा बोलना सरल है, अच्छा काम करना सरल है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है सरल बनना। तो जब सरल बनेंगे तो सारी चीज़ें इजी हो जाती है। तो कोशिश ये करता हूँ। तो पहली चीज़ सरलता की रहती है। दूसरी चीज़, मैं शुरू से जब से यज्ञ में समर्पित होने का संकल्प लिया उस समय से एक चीज़ का ध्यान रखने का प्रयास करता हूँ, कितने हद तक उसमें हूँ वो बाबा जाने, लेकिन कुछ भी हो जाए यज्ञ के प्रति और बाबा के प्रति ईमानदार रहना है। तो कोशिश ये करता हूँ कि ईमानदारी से अपनी सेवा करे। अभी ईमानदारी के अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन ईमानदार मैं खुद ये मानता हूँ कि जैसे बाबा की या बड़ों की निमित्त आत्माओं की जो आज्ञा हो गई उसको आँख बंद करके उसको फॉलो करना, उसी के आधार से फरमान वरदार ईमानदार, फरमान वरदार आज्ञाकारी, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। तो वो कोशिश करता हूँ। और ये चीज़ हमने शुरू से देखी, अपने दादी जब थे तो कई बार ऐसे होता था कि टोलियाँ बनाते समय बहुत बिजी रहते थे, और कई बार दादी की विशेषता थी ना, तो मुरली में बैठे सब लोग मुरली के बैठे हैं, दादी अचानक से बोलेगी कि गरम गरम हलवा बना सकते हैं, अभी मुरली में आएगा बाबा गरम गरम हलवा खिलाते हैं। दादी बोलेगी अभी बन सकता है, सबको मिल सकता है? तुरंत भाई साहब बोलेंगे हाँ दादी जरूर मिल सकता है। फिर हम लोग वहाँ से दौड़ दौड़ के भाग के जाते थे और फटाफट गर्म हलवा बना के सबको क्लास में मिल जाता था, क्लास के बाद मिल जाता। तो वो चीज़ एक आज्ञा का फॉलो कर दिया ना, तो उसके बाद इतनी अपार खुशी मिलती थी। और सच में मैंने देखा है कि बड़ों की आज्ञा में एक बल भी होता है, क्योंकि ऐसे पॉसिबल भी नहीं होता है अगर हम कोशिश करें तो सब चीज़ें सेट होना, लेकिन बड़ों की आज्ञा में बल भी होता है। और जब वो आज्ञा जैसे ओटे सो अर्जुन कहते हैं वैसे कि वैसे फॉलो कर लिया, तो बड़ों का एक क्या कहेंगे फेथ और प्यार दोनों मिल जाता है। एक बार का मैं अनुभव सुनाता हूँ। दादी जानकी आए और अचानक से दादी जानकी का प्रोग्राम बन गया मधुबन आने का, तो आए वहाँ से रास्ते से मुझे फ़ोन किया कि अभी दादी आ रहे और शाम को क्लास में मिलेंगे, शायद एक घंटा डेढ़ घंटा पहले ऐसे कुछ मैसेज आया, तो सबको टोली खिलानी है। हमारे पास उस समय तो कुछ बना हुआ था नहीं, तो मैंने बोला कि क्या खिलाएंगे? बोले नहीं दादी बोलती है कि कुछ भी खिलाओ लेकिन सबको टोली खिलाना है। तो हमने सोचा दादी अपने आप से खिलाएगी तो कुछ तो अच्छा बनाना चाहिए। तो हमने फटाफट ये किया, अपने पास स्टोर में देखा कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़े थे, तो थोड़ा सा मावे में वो ड्राई फ्रूट्स मिला के मावा माजून टाइप का लेकिन मावे में बना दिया। और देखो इतनी बड़ी हस्ती है, उन्होंने आज्ञा किया हमको फॉलो करना हमारा फर्ज ही है, उसमें कोई हमारी विशेषता नहीं है, बड़ा नहीं है। अगर स्ट्रिक्टली दादी कहे तो हमको बनाना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो चीफ है तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन आज्ञा को हमने फॉलो कर लिया, बना दिया और बना के वहाँ हॉल में पहुँच भी गया। दादी ने क्लास किया और सबको टोली दी। जब सबको टोली बांटने के लिए सामने लाया तो दादी को अचानक संकल्प आया, नहीं उसको बुलाओ। फिर दादी ने बुलाया वहाँ स्टेज पे, और देखो कितनी निर्माणता होती है बड़ों में। वहाँ दादी ने स्टेज पे बुला के इतना प्यार से सामने बिठाया और कहा देखो, दादी ने एक शब्द कहा इसने सबको खुश कर दिया, तो दादी इसको खुश करती है। दादी ने मस्तक पे हाथ रखा और मुख में टोली खिलाई। तो और क्या चाहिए, हमारा सेवा का रिटर्न बड़ों की दुआएं होती है ना, यही चाहिए। इसलिए कोशिश करते हैं कि ईमानदार और आज्ञाकार बने, जो भी जैसा भी आज्ञा हो। हाँ यह है रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना तो है कि हम यज्ञ के रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, कोई ऐसे नहीं है कि आए मेहमान बन के आए और मेहमान बन के लुप्त उठा के चले गए, तो हम रेस्पॉन्सिबल है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण यज्ञ के प्रति हर चीज में, यज्ञ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ न कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर मेरे सराउंडिंग कुछ हो रहा है तो भी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर रखते हैं मन में तो हम यज्ञ के आधारभूत बनते हैं। इसके लिए होता है ना कि बच्चे जब पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उस समय क्या होता है, एंजॉयमेंट होती है, हर चीज का एंजॉय करते हैं। लेकिन वही स्टूडेंट जब नौकरी पे लग जाए या बिजनेस करने लग जाए और उस समय काम धंधा छोड़ के केवल खेलपाल में लगा रहे, एंजॉय करे, तो उसको लायक बच्चा तो नहीं कहते ना। तो हम भी बाबा के यज्ञ के रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबल अगर बन के रहेंगे तो नेचुरली दुआएं तो मिलती रहती है। तो ये चीज़ एक एक फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल थोड़ा सा मैं अपने आप में एक ज़्यादा फोर्सफुली कर रहा हूँ कि दृढ़ता पे। कई बार ये होता था कि मैं प्लान तो बहुत अच्छा कर लेंगे लेकिन कुछ परिस्थिति आ जाए तो थोड़ा सा पीछे भी हट जाते थे। तो अभी एक उस पर फोकस कर रहा हूँ कि नहीं, जो कुछ भी मैंने प्लान किया है तो उसके ऊपर दृढ़ रहूँ, और दृढ़ता का जो विशेषता है गुण अपने अंदर जितना हो सके धारण करूँ ताकि हम यज्ञ को मजबूत बना सके। तो इस तरह से बाकी तो आप लोग या बाबा जेस्ट करेगा कि क्या क्या विशेषता है, लेकिन अच्छा लगा आप लोगों से शेयर करके।
अच्छा, तो ये 10 पूछे थे, 6 ही गुण हुए अभी तक।
तो आप बताइए।
अच्छा ठीक है, आप पूछ लो। ओम शांति। प्रश्न है, मधुवन बेहद का घर, बेहद का परिवार है और इस परिवार में भिन्न भिन्न संस्कारों वाली आत्माएं रहती हैं, तो इन भिन्न भिन्न संस्कारों वाली आत्माओं के साथ रहते हुए आप उनके साथ कैसे तालमेल बनाकर रख के चलते हैं, जिससे आपस में टकराव, मनमुटाव होने की संभावनाएं ना हो या कम से कम हो।
ब्राह्मण परिवार है तो वैरायटी फूलों का गुलदस्ता तो है ही, कोई तो खुशबूदार भी है, कोई अच्छे रंग रूप वाले है जो कि आकर्षक तो दिखना चाहिए, और कोई तो ऐसे होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं, जो पत्ते होते हैं उसके। लेकिन हर एक का रोल उसमें इम्पॉर्टेंट होता है गुलदस्ते में, तभी अच्छा गुलदस्ता बनता है। केवल आप खुशबू के 4 फूल दे दो तो उसको गुलदस्ता तो नहीं कहते।
सुरक्षा के लिए कोई कांटे भी होते हैं।
सुरक्षा के लिए कांटे भी होते हैं, लेकिन कांटों का भी एक रोल है, उसमें भी यज्ञ की सेफ्टी होती है, सब हर चीज की सेफ्टी होती है। तो बाबा के जो बन गए तो बाबा ने कांटों से फूल तो बना ही दिया हर किसी को, भले कभी कभी हमको लगता है कि ये हार्ड है, लेकिन अंदर से बहुत वो व्यक्ति मुलायम होता है, बहुत मुलायम होता है, तो है तो बाबा के फूल। दूसरा, संगठन में चलना है तो ये सारी चीजें होती रहेगी। बाकी जैसे मैंने कहा कि मैं किसी की शिकायत नहीं करता हूँ, ये मैंने खुद अपने ऐप से निश्चय किया है, वैसे ही मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति झूठे ब्लेम करता है या शिकायत करता है या कोई ऐसे व्यर्थ का वातावरण बनाता है तो भी उस व्यक्ति का उसमें कोई दोष नहीं है, उस व्यक्ति का दोष नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद को कमजोर महसूस करता है, इसलिए दूसरों का जो मजबूती है या पावर है वो सहन नहीं कर पाता है। और मैंने ये चीज नोटिस किया है कि इन सारी निगेटिव चीजों का है ना, निगेटिव तो नहीं कहेंगे उसको क्योंकि बाबा के बन गए तो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, लेकिन ये व्यर्थ की चीजें, वो व्यर्थ की चीजें भी बहुत थोड़े समय का उसका लाइफ होती है, कुछ समय तक कुछ ऑब्स्टेकल होंगे, कुछ समय तक सामने से कुछ बहुत सारी चीजें आएगी, अपने ऊपर हैमरिंग होगा, प्रेशर आएगा, लेकिन अगर हम अपनी स्थिति में कायम है और जैसे कहा कि उसको दिल से माफ करते जाएंगे ना, तो एक दिन ऐसे आता है कि वो सामने नतमस्तक होकर आ जाता है। बाबा के सामने तो हर व्यक्ति खुद को रियलाइज करता ही है, चाहे कोई कितना भी बुरा काम करे या कोई कितना भी कैसा ही काम करे, व्यर्थ का काम करे, लेकिन बाबा के सामने तो गिल्टीपन फील होता है, और गिल्टीपन के कारण फिर वो थोड़ा से आवेश में आते हैं या किस तरह से होते हैं। लेकिन अगर मैं भी उसी रिएक्शन को रिएक्ट करने लगूं तो फिर मजबूत तो सामने वाला व्यक्ति हो गया, उसमें मेरी मजबूती तो नहीं रही, और जब मेरी मजबूती उसी में है, जब मैं उसको समाने का प्रयास करूं, अपने अंदर समाने का करूं, तो कोशिश ये करता हूं कि कितनी भी बड़ी बात हो जाए तो अंदर समा लेना है। बहुत कम, शायद भाई लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत कम ऐसी होता है कि कोई चीज हो गई और उसका मैं मतलब सब जगह वर्णन करते रहे, वर्णन करने से वो चीजें भी खराब हो जाती है और सबसे पहले तो हमारी स्थिति खराब हो जाती है। इस तरह से संगठन में रहते।
तो कमी कमजोरियां देखते भी आप नहीं देखते, कभी हमारे में भी कोई कमी भी देखी आपने?
नहीं, कमी है ही नहीं ना, किसी भी बाबा के बच्चे में कमी है ही नहीं।
बाद में बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न ये है, अभी परसों मुरली जो चली 25 फरवरी को, तो उस मुरली में से आपने क्या होमवर्क निकाला है जो हम भी करने लग जाए उसको?
बाबा की मुरली वैसे तो हर मुरली बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन कल की मुरली में खास करके एक चीज जो व्यर्थ को समाप्त करना है, तो उसके लिए मैंने खास खुद से एक निश्चय किया है, क्योंकि हम व्यर्थ में तो ठीक है कोशिश करते हैं नहीं जाते हैं, या कोशिश करते उसे संभाल करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है जो मुझ में भी कुछ हद तक वो कमी थी जिसको मैं अभी पूरा करने का प्रयास करूंगा, कि हम व्यर्थ से बच के रहते हैं, लेकिन अगर हमारे सराउंडिंग में कुछ व्यर्थ बातें होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये करते कि वहाँ से हट जाते हैं, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन कम से कम उस व्यर्थ को रोकने का थोड़ा प्रयास करना चाहिए, कि अगर कहीं कहीं कुछ हो रहा है तो उसको एक बार तो आप टोक दीजिए कि नहीं ये चीज़ व्यर्थ है, इसको स्टॉप कीजिए। मैं खुद तो स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा भी स्टॉप होगा तभी वातावरण हमारा समर्थ बनेगा, नहीं तो हम कितना भी समर्थ बनने का प्रयास करेंगे तो व्यर्थ का कहीं ना कहीं हिट हमारे ऊपर होता रहेगा और हमारे वातावरण के ऊपर भी होता रहेगा। तो इस मुरली से तो मैंने सोचा है, निश्चय किया है कि कुछ हद तक कोशिश करें कि जहाँ जहाँ व्यर्थ लगता है वहाँ उसको स्टॉप करने के लिए कम से कम एक बार बाबा की तरफ से इशारा हम दे देवे, ताकि हमारा वातावरण अच्छा बन जाए। हाँ देखो, वो ये चीज़ होती है, लेकिन वो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड होती है कि हम किस आधार से कैसे इशारा सामने वाले को देते। एक होता है कि मैं करके कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मैं ही समझता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही अच्छा है और मैं जो कर रहा हूँ वही श्रीमद प्रमाण है, बाकी सब गलत कर रहे हैं। इस आधार से अगर मैं किसी को बोलता हूँ, टोकता हूँ, तो उसको भी हर्ट होगा और टकराव होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। लेकिन अगर एकदम ट्रस्टी बन के, थर्ड पर्सन बन के, बहुत बड़े दिल से भगवान के तरफ से कि भाई, जैसे हम दोनों भाई बैठे हैं, दोनों भाई आपस में बिना वजह की किसी तीसरे चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो व्यर्थ आ गई ना, तो हम इतना तो कह सकते कि भाई अभी ये चीज़ छोड़ दो, ये चीज़ स्टॉप कर दो। तो कम से कम वो जो प्रकंपन है व्यर्थ के, वेस्ट के, वो तो स्टॉप हो जाएंगे,
उसको चुप नहीं कर सकते, हम खुद चुप रह सकते हैं।
जहाँ बड़े होते हैं वहाँ हम दिल से अपनी भावनाएं वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करें। कई बार ऐसे होता है कि बहुत बड़ी सभा है, बहुत बड़ी सभा में भी जो टॉपिक से हटकर कुछ दूसरी बातें शुरू हो जाती है और सारे बड़े होते हैं जो उसके ऊपर डिस्कशन करने लग जाते हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये थोड़ा सा लीक से हट गया। अगर उस समय हम थोड़े से अपना बॉडी लैंग्वेज ऐसे दिखा देते कि नहीं अभी ये नहीं, पेट में दर्द नहीं नहीं ये ठीक है नहीं है, थोड़ा सा
तो कमलेश भाई अपने भुक्त भोगी बता रहे हैं, छूटने के लिए ऐसे बता
चेंज करने के लिए कुछ इस तरह से पावरफुल पॉइंट सामने रख देवे, तो वो व्यर्थ स्टॉप हो जाता है, पावरफुल पॉइंट पे डिस्कशन शुरू हो जाता है।
ओम शांति। जीतू भाई, आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि आपके अंदर भी ऐसा कोई एक संस्कार है जिस पर आपको काम करना है, या आप उस पर काम कर रहे हैं, या ऐसी कोई कमी है कि जो आपको लगता है वो मुझे हटानी है पर हटी नहीं है, ऐसा भी कुछ है कोई गुप्त?
नहीं, गुप्त नहीं, अच्छी तरह से वे प्रत्यक्ष ही है। मुझे नहीं, पर्सनल नहीं, वो तो सबका पुरुषार्थ सबके सामने ही होता है, लेकिन है, हर एक बाबा जब तक संपूर्ण नहीं बनते, कर्मातीत नहीं बने, तब तक कमियां तो रहेगी रहेगी और हमें उसको ठीक करना ही है। और मैं तो सबसे कहता भी हूँ कि अगर मुझे मेरे नोटिस में मेरी कमी नहीं आवे, आपके नोटिस में आए कम से कम मुझे बता दो एक बार, ताकि मैं उसको ठीक कर दूँ। बाकी एक चीज़ जो मुझे अपने में कमी लगती है, मैं थोड़ा जल्दी किसी से प्रभावित हो जाता हूँ, भले अच्छाई से प्रभावित हो जाए किसी भी चीज से।
बाबा ने कहा है गुणग्राही बनो।
नहीं, गुणग्राही बनना अलग है, लेकिन प्रभावित होने के बाद थोड़ा सा ऐसे होता है कि उस व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आने के कारण फिर जो एक क्या कहेंगे उसको थर्ड पर्सन बन के देखने की दृष्टि है ना, वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो इसलिए ये चीज, और दूसरी एक चीज जो शुरुआत से ही है, जब मैं पढ़ाई पढ़ रहा था उस समय से ही है कि मैं किसी को जल्दी से ना नहीं कर पाता हूँ किसी चीज का तो ये कमी है, क्योंकि उसके कारण कई बार लॉस भी हो जाता है, और कई बार जो हमारे साथ वाले होते हैं तो वो भी थोड़े से ये हो जाते कि ये ना नहीं कर पाता है। मैं तो ये भी कई जगह से कमेंट सुने मेरे लिए, अभी इवन ये कोविड का पीरियड चल रहा था तो बहुत सारे ऐसे भाई बहने थे या 7-8 मास से या मधुबन में रहे हुए थे सेवादारी वगैरह, अभी उनके अपने प्रॉब्लम थे, हम कम्युनिकेट कर रहे थे बहनों से भी, तो वो भी कह रहे थे कि अकेले कैसे आएगा वगैरह वगैरह। तो लेकिन वो सामने से आएंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे तो ना नहीं कर पाएंगे। तो कई बार तो ये भी कमेंट मिला कि नहीं, ये तो है ना जीतू भाई जो है वो खुद अच्छा बनने के लिए किसी के ऊपर फोर्स नहीं करता है। तो हो सकता है कि डिसिप्लिन में वो चीज़ थोड़ी सी एरर बने, लेकिन मैं देखा है कि अगर हमारी भावना अच्छी है तो कोई भी चीज़ विघ्न रूप तो नहीं बनती है। बाबा बैठा है, बाबा उसको सॉल्व कर लेता है। इसलिए दो चीज़ों का थोड़ा सा कोशिश करते हैं। ठीक,
कमलेश भाई पूछ रहे हैं आपको कोई साक्षात्कार वगैरह कुछ हुआ है क्या?
साक्षात्कार तो नहीं हुआ अभी तक।
कोई विजन, कोई
साक्षात्कार तो नहीं हुआ, एक कोशिश किया था एक बार साक्षात्कार कराने की
या कभी आप ध्यान में, ट्रांस में वगैरह गए?
ना ना, बच्चों
के दादियों के बहुत नजदीक रहे, तो कभी आपने दादियों को किसी को रिक्वेस्ट की थी कि मुझे भी कुछ रस्सी खींच लो वगैरह?
हम बच्चों के प्रोग्राम में जब आए थे तो एक बार क्या हुआ, यहाँ बाबा ने संदेश भेजा गुरुवार के दिन कि आज सभी बच्चों का वतन में स्वागत है। तो उसके बाद में शाम को बाबा की पहाड़ी पे गए सभी बच्चे, लगभग 100-150 बच्चे बाबा की पहाड़ी पे गए, और वहाँ गए तो अपनी मधुबन के मोहिनी बहन जी थे, वो भी पहाड़ी पे आए थे। तो वहाँ इतना जबरदस्त पाठ शुरू हो गया, मोहिनी बहन जी जिसको दृष्टि देवे वो वतन में चला जाए, जिस बच्चे को दृष्टि देवे वतन में चला जाए। कोई स्वर्ग देख रहा है, कोई विनाश देख रहा है, कोई कृष्ण के साथ रास कर रहा है, ऐसे फलाना फलाना बहुत हुआ। और हम लोग 8 लोग आए थे वहाँ से, हमारे सेंटर से, तो हमारे साथ वाले 4 लोग तो चले गए वतन में, और हम 4 लोग थे, हमने बहुत कोशिश किया 3-3, 4-4 बार दृष्टि लिया लेकिन हमको कुछ हुआ नहीं, ट्रांस में गए नहीं। आखिर हम लोगों ने फिर उनको सोचा कि नहीं, हमारा यही पार्ट है, हमारा शायद योग कम हो गया होगा इसलिए हमको विजन नहीं दिख रहा है। इसलिए सारे जो बच्चे थे या कोई उनके गाइड भी थे वो भी ट्रांस में चले गए थे, तो उनको संभालने का वहाँ काम किया फिर कई तो बच्चे ऐसे थे जो वतन से जल्दी आए ही नहीं, फिर हमारे मधुबन के कोई भाई लोग आए और गोदी में उठा के उनको लाया और हिस्ट्री हॉल में रखा। फिर दादी ने बाबा को रिक्वेस्ट किया कि बाबा जल्दी भेजो इनको, फिर वो आए। लेकिन आज देखते हैं तो हम जो 8 लोग थे ना, तो 4 चले गए थे, वो 4 दुनिया में है और हम जो 4 भाई बहन थे, 1 बहन और 3 भाई लोग थे, वो तीनों के तीनों बाबा के पक्के बच्चे हैं और समर्पण बुद्धि से रहते हैं। तो इसलिए उस समय पता चला, अभी पता चला कि साक्षात्कार केवल बाबा कराता है, उसमें हमारा रोल नहीं होता है। बाकी जब बाबा से मिले थे पहली बार तो उस समय अनुभूति ये हुई थी, जब मधुबन में आने के बाद बाबा से मिले थे तो मनमना भव जो हम कहते हैं कि उसकी अनुभूति हुई। सेवा में बहुत बिजी थे, रात के 10-11 बजे तक बादाम की मिठाई बना रहे थे, शिवरात्रि का दिन था, और 11:30 बजे वैसा बोलते कि नहीं अभी बाबा से जाके मिलो, बाकी कल करेंगे। तो जब दौड़ के आए ओम शांति भवन में तो हॉल पूरा पैक था, धीरे 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 देख के देखते आगे एकदम आगे, तो जैसे वहाँ आगे थोड़ी सी जगह बची थी वहाँ जाके बैठ गए, तो वहाँ जो बैठने के बाद जो अनुभव हुआ कि जैसे कि सब कुछ भूल गया, कुछ भी नहीं, बाजू में कौन है, पास में कौन है, कहाँ बैठा हूं, बाबा के बाजू में कौन है, सब कुछ केवल बाबा की आंखें और हम। जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे लीन होगी, इस तरह से अनुभव हुआ, केवल बाबा की आंखें और हम, और ऐसे खोते हुए ऐसे बाबा उठे, वो एकदम मेरे पास में आ गए चल के, एकदम खोया रहा। और अचानक से ऐसे लगा कि जैसे नहीं पूरा शावर हो रहा है ऊपर, फिर थोड़ा सा खुला तो पता चला वैसे कि बाबा है ना उठ के सामने चल के आए और जो फ्लैग लहराया, तो ड्रामानुसार हमको जगह ऐसी मिली थी एकदम फ्लैग के नीचे, तो ऊपर से वो फूल है गुलाब के फूल हम लोगों के ऊपर पड़े, तो वो एकदम थ्रिलिंग अनुभव है। तो उस दिन पूरी रात भर हमने सेवा की थी, दूसरे दिन सवेरे 4 बजे से सेवा की, लेकिन जो एनर्जी उस समय महसूस हुई वो पता नहीं शायद अभी तक वही काम कर रही है, लेकिन वो अभी मुझे लगता है कि हर किसी, हर ब्राह्मण आत्मा को बाबा एक बार तो ये अनुभव कराता है, लेकिन हमारा एक पुरुषार्थ है कि उस अनुभव को हम कितनी बार दोबारा रिपीट कर सकते, तो कोशिश करते हैं कि उसको रिपीट करने का।
जीतू भाई, आपने यूथ विंग में काफ़ी सेवाएं की है, तो उसमें से ऐसी कुछ बातें बताइए जो आपके अनुभव रहे उस सेवाओं में, जो यूथ के साथ आपके क्या अनुभव रहे, या उनके लिए आपकी क्या प्रेरणा है, जो आज का यूथ है उसकी क्या स्थिति है, और आपने अभी तक जो सेवाएं की उनका उन पर आपके रीति से आपके अनुसार क्या प्रभाव पड़ा यूथ विंग?
यंगस्टर्स की एक मेंटेलिटी नोटिस किया, जैसे मैंने कल भी कहा था कि शुरुआत में मैंने देखा था जब पढ़ रहा था कि उनके पास या तो टारगेट नहीं है या तो गोल बनाया है तो बहुत बड़ा गोल बना दिया, उसके कारण डिप्रेस हो रहे। दूसरा, अभी जब सेवाएं करना शुरू किया तो ये फील किया कि कहते हैं कि यंग एज में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, और हमारे भारत में 65% यंग है, यूथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिप्रेस या सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यूथ ही होते हैं। इसलिए अगर उनके माइंड को हम समझे और उनको अगर हम कोशिश करें कि उनको कुछ उस तरीके से दे पाए जो उनका कंफ्यूजन और डिप्रेशन दूर हो जाए, तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इस आधार से बहुत सारे युवाओं से मिलने का एक ये मिला, चांस मिला सेवा के कारण। तो प्राय मतलब यही देखा गया मेनली कि सब में एक तो कंफ्यूजन है और दूसरा इनसिक्योरिटी की भावना, उनको लगता है कि हमारा कोई है नहीं, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो कोशिश ये करते हैं अभी कि हम उनको उनकी लैंग्वेज में कहने का भाव कि जिस तरीके से यंगस्टर समझते हैं, क्योंकि अगर हम उनको कहेंगे कि आप आओ शांति का अनुभव करो, सुख का अनुभव करो, तो उनको नहीं पसंद आता है या पता भी नहीं चलता है। लेकिन उनको अगर उनके करियर में कुछ अच्छा हो जाए, उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और इसी के लिए हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं, प्लान्स भी करते हैं, और मैंने इसके कारण, खास इसी एक प्रयोजन के कारण, काउंसिलिंग भी कभी मास्टर डिग्री लिया यहाँ ऑनलाइन में, तो कई सारे चीज़ों में उनसे काउंसलिंग करने का भी चांस मिलता है और करते भी है, उनको बेनिफिट भी होता है। जैसे आप लोगों को अभी इस बार का भी एक हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका भी पता होगा कि यूथ फॉर ग्लोबल पीस, तो उसमें अलग अलग मास की अलग अलग थीम है, और उस थीम को इस तरह से क्रिएट किया गया है कि उनके प्रैक्टिकल लाइफ में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। जैसे इस मास की जो थीम थे लव की, तो उसमें यही है कि सेल्फ लव क्या होता है, कि खुद की केयर कैसे करें, दूसरा फैमिली के साथ लव कैसे हो, तो फैमिली में जितने भी हमारे जीवन बनाने के लिए कारणीभूत है तो उनको थैंक्स करें, जो ऐसे होए जिनसे हम कभी सॉरी नहीं कर पाए उनको सॉरी करें, प्रकृति के साथ जुड़े, फिर गॉड के साथ जुड़े, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है तो उनको रोज छोटा सा लेटर लिखे, तो इस तरह से उनके सामने दिया है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं और बेनिफिट भी हो रहे हैं, बहुत अपने एक्सपीरियंस और शेयर कर रहे हैं इस चीज़ के।
और किसी को कोई प्रश्न पूछना है जीतू भाई से?
अभी जो बस चल रही थी वो कोविड के कारण अभी स्टॉप है, क्योंकि बाहर तो प्रोग्राम्स नहीं हो पा रहे हैं। अभी उसको दोबारा शुरू करने का प्रयास है यूथ फॉर ग्लोबल पीस में, जब हो जाए क्लियर उसके बाद में शुरू हो जाएगी। अभी तो अहमदाबाद में।
आप सेवाधारी माताओं के काफी संपर्क में रहते हैं या उनको ड्यूटीज देना ये सब, तो उनके लिए आपकी क्या प्रेरणा है, माताएं बहनें जो मधुबन में खास सेवा के लिए आती
है? दादी कहती थी, सेंटर्स के लिए खास करके कहती थी कि जिस सेंटर में माताओं की संख्या ज्यादा वो सेंटर हमेशा भरपूर रहेगा। तो मधुबन में भी देखा कि माताएं जो होती है, बहनें जो होती है, वो दिल से सेवाएं करती है। माताओं की एक विशेषता होती है, खास करके सबने आपस में भी नोट किया होगा, कि वो दो घरों को मैनेज कर सकती है। एक तो जामाई का होता है, वहाँ मैनेज करती है, जब दूसरे घर में जाती है तो अपने आप को पूरी तरह से उस घर के आधार से अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है और उस आधार से पूरे घर को जैसे अच्छा संभालती है। तो माताओं में ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी और संभालने की जिम्मेवारी बहुत अच्छी होती है। तो मधुबन में भी जिम्मेवारी से सेवाएं तो करती है, लेकिन अगर हम उसको यज्ञ सेवा के रूप में ले, वे केवल ऐसे नहीं कि एक डिपार्टमेंट की सेवा कर रहे, तो यहाँ अच्छा वाइब्रेशन बन सकता है। और बाकी सब समझदार है ही, तो
और मधुबन निवासी जो है
जी नहीं नहीं नहीं
नहीं माता है बहुत माता है तो बहुत खुश रहती है, हमारे पास आती है, बताती है।
पांडव भवन की विशेषता है कि यहाँ आने के बाद भले रहने के लिए थोड़ा सा साधारण होता है या कुछ भी होता है, लेकिन जो मधुबन का वातावरण मिलता है उसके कारण सब गदगद होते हैं और कोई बोर नहीं होता है, और 100% नहीं 150% अपना एफर्ट देके सेवा भी करते हैं और पुरुषार्थ भी करते हैं। तो बस यही था कि यहाँ मधुबन में आए तो केवल सेवा नहीं करे, लेकिन अपनी स्थिति भी अच्छी तरह से बना के यहाँ से सैंपल बन के जाए तो दूसरों को गाइड कर सकते हैं।
और किसी को कुछ पूछना है? हमें एक बात याद आ रही है, शुरुआत में जब हम यहाँ आए थे तो उस समय हमारे एक रिलेटिव है, हमारे मामा जी है, तो वो पुलिस कमिश्नर है, तो वो आए थे उस समय। जीतू भाई, रवि भाई ने इन्होंने उनको काफ़ी इधर घुमाया था। तो वो जब आए थे यहाँ पर तो एक एक चीज़ देख के ऐसा उनको वंडर लगता था, ये कैसे ये कैसे, और जीतू भाई उनको घुमा रहे थे, ये है वो है। तो वो ट्रेवर्स टैंक में लेके गए यहाँ पे जो है ना, तो ये नहीं थे तब जीतू भाई, नहीं थे वो, खुद ही गए। तो इतने परेशान हो गए वहाँ पर कि वहाँ देखने जैसा कुछ है ही नहीं, और वो पुलिस कमिश्नर थे, तो ये सब देखने लगे, अरे ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। फिर जीतू भाई और रवि भाई उनको बाद में पीस पार्क लेके गए, तो ऐसा इंप्रेशन हो गया उनका कि ये होता है, ये है सेवा, ये है मेंटेनेंस, एक एक चीज देख रहे हैं वहाँ की। तो उसको इतना इंप्रेस हो गए वो। और मुझे एक और एक बात उनकी याद आ रही है, एक गाड़ी शायद पांडवन या हॉस्पिटल की खड़ी थी, तो वो ड्राइवर निकल के उसको साफ कर रहा था, तो वो कहते देखो ड्राइवर को किसी ने बोला भी नहीं है, हमारे यहाँ बोल बोल के भी करता नहीं है साफ और यहाँ देखो कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। और उस समय मतलब हमें याद है, ना ही केवल हमारे और भी जो उस समय हमारे साथ नए लोग आए थे, उनके जब भी रिलेटिव आते थे उनको घुमाने का काम हम जीतू भाई को दे देते थे तो वो बहुत अच्छे से उनको कन्विंस करा के, एकदम संतुष्ट करा के भेजते थे। तो दो दिन जीतू भाई हमारे साथ बहुत अच्छे अपने अनुभव और बहुत सारी बातें जो उन्होंने बताई जो हमको भी नहीं पता थी, और आज का तो जो एक पॉइंट उन्होंने बताया एकदम दिल में अंदर चला गया, जो उन्होंने बताया कि उनकी जो एक विशेषता कहो या पुरुषार्थ की, किसी की भी कोई कंप्लेंट तो आज के बाद नो लॉजिंग ऑफ एनी कंप्लेंट, क्योंकि हम किसी की कंप्लेंट करते हैं तो फिर हमारी भी कंप्लेंट होगी, हम किसी की निंदा करते हैं तो हमारी भी निंदा होगी, चाहे कोई कैसा भी है, कितने भी अवगुण है, पर बाबा ने स्वीकार किया है और वो व्यक्ति इस यज्ञ में इसीलिए रह रहा है कि एक विशेषता तो उसमें है, और वो विशेषता ऐसी है कि वो और किसी में भी नहीं है, भगवान भी विवश हो गया उसको रखने के लिए, क्योंकि वो विशेषता और किसी में उसको नहीं दिख रही है। हजारों माता है पर उस माता में जो है ना वो और किसी में नहीं है, क्या करे भगवान भी तो उस विशेषता के लिए तो उसको रखना ही है उसको वहां पर, क्योंकि एक व्यक्ति है वो इतना अच्छे से डांटता है कि उसके जैसा कोई दूसरा डांट नहीं सकता, और वो डांट जरूरी है वहां पर तो किसको लाए बेचारे, बाकी तो अपने प्रेम स्वरूप में स्थित है तो उसकी तो बहुत जरूरी है तो सुशील भाई कंक्लूड करेंगे।
एक कंप्लेंट में एक चीज मैं थोड़ा बता सकता हूँ कि मैंने ये नोटिस किया है कि अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो भी कुछ समय के लिए शायद कोई उसकी सुन भी लेते हैं, प्रभावित भी होते हैं, लेकिन एक समय ऐसे आता है कि उनको पता चलता है कि शिकायत करने वाला व्यक्ति का काम केवल वही है, इसलिए बाद में उसको इम्पोर्टेंस देना ही बंद हो जाता है ना। कई बार हुआ मेरे साथ भी, कभी कुछ हुआ तो बाद में कुछ दिनों के बाद अचानक से बड़ों की तरफ से फोन आते हैं कि अरे आपके लिए वो भाई ऐसे आया था, लेकिन मुझे पता है कि उसका आदत ही वैसे है इसलिए आप सोचना नहीं जबकि हम ना किसी से मिले ना किसी से बात किया, लेकिन ऐसे सामने से आ जाता है, क्योंकि बड़ों का जो कहा ना कि रिस्पॉन्सिबल बनते हैं तो बड़ों का भरोसा अपने आप ही आ जाता है।
तो दो दिवसीय इस रूहानी सफर में हमने अपने रूहानी सफर को कैसे निर्विघ्न बनाना है, कौन कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना है, कैसे पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, किसी की शिकायत नहीं करनी है, और करने भी है तो कहाँ करनी है बताया भी है, हाँ कैसे कौन से संबंध से खुदा दोस्त है, तो बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं। अभी लास्ट में एक प्रश्न है, अंतिमा होते ही डालेंगे इसमें, आपका अभी इस ग्रुप के सभी के लिए विशेष तौर पर कोई सुझाव विशेष जो हमको पुरुषार्थ की उड़ान और हमारी तीव्र हो सके?
बस अभी के समय प्रमाण तो यही रियलाइज होता है कि अभी समय बहुत फास्ट रीति से चेंज हो गया, अभी देख लिया एक साल में कि एक साल पहले दुनिया कहाँ थी और अभी एक साल के बाद क्या होगी। जो बाबा कुछ समय पहले कहते थे कि ऐसा समय आएगा कि आपको अपने लिए समय नहीं मिलेगा, शायद मैं समझता हूँ कि ये समय अभी शुरू ही हो गया है और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ गई है, खास करके हम ब्राह्मण आत्माओं के प्रति। तो जो हमारी सेवा रही हुई है, वाचा से सेवा हमने कर लिया, कर्मणा से कर लिया, मनसा से भी कर लिया, लेकिन जो सेवा रही है कि हमारे फीचर्स के द्वारा सेवा करना, वो फीचर्स के द्वारा सेवा करने का हम अभी पुरुषार्थ करें और वही एक लक्ष्य रखें ताकि सबको हमारे से बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए, हमारे से बाबा दिखने लग जाए। तो इस तरह से अगर सब करेंगे तो इजीली संपूर्ण हो जाएगा, और जो कहते हैं ना बाबा कि आपके कारण दुनिया रुकी हुई है तो शायद नई दुनिया भी तो जल्दी आ जाएगी। थैंक यू।
तो फिर से हमको जीतू भाई लाभान्वित करते रहेंगे डेली यहाँ आकर, आपको डायरेक्ट अभी कैमरा दिखता है तो उपस्थिति का पता चलता रहेगा, हम बुलाते रहेंगे बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद, दो दिन में आपने बहुत सारी बातें हमको सिखाई जो हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। तो एक बात तो हमने पक्की कर ही ली है, सबके अंदर घुस गई होगी, शिकायत कभी नहीं करेंगे किसी की। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद
सबको भी चांस देने के लिए भी। थैंक यू।
सभी टोली लेके जाएंगे विशेष रूप से, कल जीतू भाई ने बनाई है टोली और कल हम देख रहे थे किस लिए बन रही है तो पता चला ये तो इधर ही आ गई टोली, बहुत ताकतवर टोली है, ये खाएंगे तो कोई सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी।
हंसते गाते जहां से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर, हंसते गाते जहां से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहां कल क्या हो किसने जाना, आज जिंदगी एक सफर है सुहाना।